उसी कोई बंद की तरफ फिर किसी अपना घोंसला बनाता है। मेरा मन ऐसा सबकी गहराई में उठकर चला जाता है। पेड़ की एक शाख पर कुछ पंख फड़फड़ाते हैं, तिनकों के छोटे टुकड़े के साथ आते हैं। देखते देखते पंछी वहाँ बस जाता है। मेरा मन सांसों की गहराई में उठकर चला जाता है। अंधेरे के झुरमुट को चीर कर मक्खी सुबह के आते ही चल चाहता है, फिर अंदर में दूर निकल जाता है। मेरा मन सांसों की गहराई में उठकर चला जाता है। जब तीखी धूप गुनगुनी हो जाती है और शाम के साए गिर जाते हैं, जब डूबता सिंदूरी सूरज घर में उसे बुलाता है, तब मेरा मन ऐसा सोच के गहरी में डूबता चला जाता है। एक दिन वो सुबह के साथ गया पर शाम के साथ नहीं आया, फिर कभी नहीं आया। अंजा टूटने लगा, पंखे निकलने लगे, बिखरते चले गए, पत्ते में अटका तिनका। जब भी पंखे की याद दिलाता मेरा मन ऐसा सोच सुनाई जिन्हें अपने मरने का डर है, जिन्हें अपने मरने का खौफ है, वे डरे डरा गए और दर्शन अस्त्र शस्त्र। जिन्हें अपने मरने का खौफ है वे डरे डरा गए और रखें अस्त्र शस्त्र। जो क्रूर है विद्रूप है, जो क्रूर है विद्रूप है, बेओढ़ा करें आभूषण वस्त्र, बेओढ़ा करें आभूषण वस्त्र। पर तुम तो सर्वांग सुंदर हो, पर तुम तो सर्वांग सुंदर हो, इसलिए दिगंबर अस्त्र और आयुध का क्या काम है, तुम अपने आप में निडर हो। और वस्त्र आभूषण का क्या काम है, जब तुम अपने में पूर्ण काम हो। सोचता हूँ कि कोई सब सजो करके रख ले और आने वाले लोगों को बताए कि थोड़ा थोड़ा जी कर जीवन पूरा जीवन एकदम नहीं दिया है। क्रिकेट करने का जो रिश्ता है ये कोई अस्पताल करके दिया है। जब किसी ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब आप कल कहते चले तो तीनों फिर मुझे लगा कि कब मुझे हाथ होता, कब मुझे आनंद होता। तब जब कोई व्यक्ति कहना चाहिए इस मार्ग पर शुरू करते हैं, थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति इस मार्ग को अच्छा मानता है तो मुझे बहुत अच्छा बहुत आनंद होता है। चलो कम से कम जो कभी नहीं करता था और उसने इस मार्ग की शुरुआत करी थी। पर कभी कोई पीड़ा भी होती जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और ऐसे व्यक्ति से रिस्पॉन्स नहीं मिलता जहाँ से भी मिलना चाहिए। हाँ बहुत सारी अपेक्षाएं जो रहती हैं तो उस समय बहुत पीड़ा हुई। तब लिखा था कि मैं तो लोगों के लिए एक सीढ़ी हूँ, मैं तो लोगों के लिए एक सीढ़ी हूँ जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊंचाइयाँ छूना है। मैं तो लोगों से एक सीढ़ी हूँ जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊंचाइयाँ छूना है। तब सीढ़ी का क्या अधिकार कि वो सोचे कि कितने धीरे से पैर बहुत पीड़ा हुई थी। ये 14 अप्रैल 93 कि ठीक है मेरे माध्यम से तुम्हें तो ऊंचाइयाँ छूना है छू, मैं सिर्फ मीडिया हूँ, मुझे अधिकार भी नहीं है सोचने के कि बहुत धीरे से लूंगा। और इसी तरह एक और कटनी में फील हुआ था
आपने
तो वहाँ पर भी ऐसे ही लगता है कि उछालते हैं लोग, कई चीज़ें नहीं होने पर भी तो ठीक है, एक पत्थर उछालो, एक पत्थर उछालो पर दर्पण तोड़ने से पहले इतना जरूर देखते ना कि कहीं उसमें बना हुआ मुझे कोई दिक्कत नहीं, दर्पण से कुछ देंगे पर ऐसा तो नहीं वो टूटे कभी कभी ऐसे ही बाद में सोचता हूँ कि कैसे डूब गया। आज से 12 साल पहले सब कुछ छोड़कर समर्पित हुआ आतंशी से 12 साल बाद मिला उसी डेट में सपना के चतुर्मास का दौर क्या है उसी डेट में 10 जनवरी और 92 में पूरे 12 साल क्या 12 साल एक युग हो गया और हाथ उन्होंने अपने हाथ में मेरा सोच लिया और चले थोड़ी दूर तक तो मेरे आनंद की बात
मेरे पुस्तक
बहुत रोमांचित से बहुत अधिक उस समय होते हैं बहुत अधिक हुआ और वो समय या फिर आतंशी जब अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ को तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो वो एक्सट्रीम था मेरे अपने लाइफ में वो आज से 12 वर्ष पहले सब कुछ छोड़कर समर्पित हुआ था हाथ लग रहे जैसे सब कुछ पाकर पुनः समर्पित सब कुछ छोड़कर समर्पित हुआ था हाथ लग रहा जैसे सब कुछ पाकर समर्पित हो गया इस बीच बीते हुए वर्षों में क्या हुआ मैं इच्छा सब भूल गया 12 वर्ष और मुझे उस दिन में कोई फर्क नजर नहीं आया मैं इच्छा जो उन्होंने हाथ पकड़ा अरे उन्हें तो हाथ चल रहा मैं 6 किलोमीटर से जबलपुर आया था और 6 किलोमीटर बिल्कुल मैंने गया था और फिर 6 उनके साथ चल के वापस आया 18 किलोमीटर चले गए और 1 बजे से मिले सब भूल जाता फिर कितना कुछ भी कोई दुनिया दिन दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं नहीं जब आप लोग और वही उन्हें ये भी एहसास था कि बचपन में जब स्कूल जाता था तो स्कूल तक पहुंचाने वाले से पहले ही वापस लौटना था बच्चे में जब स्कूल जाता था तो वो पहुंचाने आने वाले से पहले दूसरे रास्ते से आ जाता था अम्मा की गोद में फिर छुपा के कहता था कि कहीं नहीं जाऊंगा आज 12 वर्ष के बाद लग रहा है कि फिर से कहूँ कि अब कहीं नहीं जाऊँगा अब आदेश के पास आ गए तो मेरे से कहता था कि आपका क्या प्रोग्राम है आगे तैयार करने वाले आई बहुत जोर से डांट देते थे कि मैं आतिश के साथ हूँ जैसे जैसे कुछ दिन निर्णय नहीं लीजिएगा अभी प्रोग्राम अच्छा नहीं लेगा तो हमारे यहाँ पर तो वो क्षण आत्मीयता की गहराई तो इसमें है कि हमें अपने आत्मीय को अलग से याद ही नहीं करना क्योंकि भूलते ही तो कैसे भूल जाए थे करना बंद मेरी विरक्ति में कारण सोचते हो तो मेरी विरक्ति का कारण सभी के प्रति आसक्ति मेरी विरक्ति का कारण सोचते हो तो मेरी विरक्ति का कारण सभी के प्रति आसक्ति है और मुझे ये पूछते हो कि पीड़ाओं सहने की ताकत कौन देता है तो जब तुम किसी के स्नेह में आकाश के तारे तोड़ने की बात कर लेते हो तो क्या मैं परमात्मा से देव कहना भी नहीं करता नहीं कहना तो चाहे सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो है तो कोई चीज जो कि हमें हमारी शक्ति को जागृत कर सकती और किसी एक से जुड़ जाना और प्राणी मात्र हमारा हो जाना ये मुझे कोई सपना पूछा कि आप इतना सहन कर लेते हैं उसका कारण बताइए और आपकी ग्रंथि बहुत शार्प हो गए प्रतिबंध करते हैं तो हम उसकी बात करेंगे अभी अभी जा रहे हैं देश से दूर करने की प्रक्रिया तुम्हें आ जावे तो अपना मन बच लगाने के लिए नहीं ये सब ग्रंथ लिखते हैं और उसके लिए नहीं है। पहले तो यही लिखा कि पैतमानी हुए तो पढ़ लो जिसमें तुम्हारे मन में जहाँ आ जावे कि हमसे बड़े बड़े पुरुष हुए हैं इनमें इतनी विपत्तियाँ कहीं फिर भी क्षमता भाव रखा। अरे यही तो क्षमता भाव ही तुम्हारा धर्म है। बस इतना क्षमता परिणाम आ गए तो उसके लिए पैतमानी हो गए। अपन अपने पूर्व पुरुषों के बारे में सुनते हैं तो कैसा आह्लाद होता करेगा ऐसा चरित्र था उससे हमारे चरित्र में दृढ़ता आती उससे हमारी श्रद्धा को उस छोटे उसमें लिखा कि श्रद्धा को बढ़ाने वाली कथाएं हैं ये पुराण की कथा करें देखो कितनी श्रद्धा ये वो हमारा उद्देश्य यही था कि इसमें अपन बहुत प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। समास वगैरह तो बहुत कठिन वाली चीजें हैं ये तो हमने समुद्धार भी बता दिया क्योंकि आपने पूछा था उसको भी कठिन करेंगे उसको जीवन से कोई समुद्धात आ जाए और अपने काम का भी है कि हमें वेदना समुद्घात नहीं होना चाहिए हमें कषाय समुद्घात आत्मा के प्रदेश निकलेंगे आस्त्रव होगा जिसका आदि तो इसलिए मैंने वो समाज जीव समाज नहीं टच नहीं कर आप समझदार समझ रहे हैं ना। देखो उनने कैसा प्रश्न कर लिया आपसे वो याद नहीं किया अभी तक मैंने रख लिया उसके निकाल के फिर उनको तो क्षमा कर दिया लेकिन वो प्रश्न आया कैसे मन में ये बातें इसी तरह आती जब हम ब्रह्मचर्य की अवधारणा ठीक नहीं बढ़ाएंगे और बहुत ऊंची चीज ब्रह्मचर्य की बढ़ा देंगे तो मैं तो जिंदगी में कहूँ ब्रह्मचर्य सोच ही नहीं पाएगा और हम छोटी चीज बनाएंगे कि भैया कम से कम इतना तो कर ही सकते तो वो कहें अरे वाह ये तो हम ऐसे तो कर ही लेते हैं तो आसान है इसलिए ये चीज उठी है और कुछ नहीं हमने बहुत ऊंची चीज बता दी और नहीं छोटी चीज तो कितनी मुश्किल में व्रत लिया बताओ कहाँ से आ गई ये चीज या तो रजनीश को पढ़ लिया है और या फिर किसी और दूसरे को पढ़ लिया है अब वो प्रभावित हो जाते हैं उससे उसने कुछ 18,000 चीन के दोष बताए वो तो हम भी जानते हैं कि कैसे कितनी जल्दी जो है दोष लग सकता है लेकिन ले कैसे सकते हैं ये प्रक्रिया तो बताना चाहिए। गिरने की प्रक्रिया तो बता दी लेकिन चलोगे कैसे जो चलेगा वो तो गिरेगा भैया ऐसा तो है नहीं बैठे वाला कहे कि हम तो कहो नहीं गिरे तो चले गए जो गिरे हम तो नहीं गिरे तुम तो गिर जाते तो चलने वाला तो गिरेगा उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे चलो यहाँ पर गड्ढा आ सकता है यहाँ पर बचना यहाँ पर ऐसे भाव बिगड़ सकते हैं इससे संभाल करना इससे संभाल करना फिर भी बिगड़ जाते हैं तो कैसे प्राश्चित करें क्यों बिगड़ी भाव मेरे कर्म के उदय बड़े बिगड़ गए या कि मजबूरी बिगड़ गए या कि मैंने अपनी तरफ से बिगाड़े हैं तो ज़्यादा भारी पनिशमेंट दिए ये क्यों रखा फिर से प्रत्याख्यान करो। अब हम हमारे लिए कोई कहे रोज के रोज मंदिर जाते हैं और कहते हैं प्रत्याख्यान का स्थापन करते हैं भगवान चार प्रकार के भोजन को ग्रहण करूंगा और अंजलि लेकर के निकल फिर उदय से बाबू साहब मैं अब जो है ये मैंने मिथ्या कार्य किया कितनी हिंसा का कार्य है मैं इन चारों प्रकार के आहार का कल तक के लिए त्याग करूँगा अब प्रत्याख्यान करो कल फिर करो विपाक करना है ये तय है लेकिन रोज रोज प्रत्याख्यान करेंगे रोज रोज ग्रहण करेंगे तो वो लोग लगेगा अरे कैसा नाटक कर रहे हैं जब तुम्हें लेना ही है तो प्रत्याख्यान क्या कहे कहते नहीं लेकिन जब तक नहीं ले रहा हूँ तब तक का मेरा संकल्प है कि नहीं लेऊंगा। बात तो इतनी है हम जितनी देर तक जैसे मैंने अभी दोपहर में कहा था कि कौए का मांस छुड़वाया था बताओ बाकी सब तो खाता था वो तो उसको क्या व्रती नहीं था वो व्रती कहेंगे कौए का मांस छोड़ा इसी तरह से ये है कि जिसने एक दिन के लिए व्रत किया है अगले दिन एक महीने का जिसने आलू का त्याग किया आलू को एक महीने का भक्ष मानेगा और एक महीने के बाद खाने लगेगा अब भक्ष हो गए लेकिन उसने एक चीज नहीं खाए इतने तो वो इतना इतनी ही निकलते वो बच गया ये सिद्धांत उसमें लगाना चाहिए। इसलिए बड़ी चीज हमने देख लिया हमने बहुत पहले लिखा था संध्याती में कि जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था इधर उधर की सब तो दुनिया भर की सब किताबें पढ़ते हैं तो लोगों ने कहा कि आप जैनागम तो कम पढ़ते दिखाई देते हैं ये वाली और दूसरे दूसरे लोगों की बहुत किताबें पढ़ते रहते हैं आप तो मैंने उस समय उनको यही जवाब दिया था कि मैंने पुरानियों के शास्त्र में से अच्छाई निकालना सीख लिया है लेकिन लोगों को तो मैंने अच्छाइयों के शास्त्र पढ़ करके बुराइयाँ निकाल के देखा जिनको आप बुराइयों का शास्त्र कहते उसमें से हमने कुछ अच्छी चीज़ निकाल ली और आप तो यह अच्छाइयों के शास्त्र पढ़ पढ़ करके और सिर्फ बुराइयाँ निकालते हो क्या कर रहे हैं आप। तो जब भी कमल मिलेगा कीचड़ में से मिलेगा वो कीचड़ में घुस के मिलेगा कमल मिलेगा लेकिन तो कीचड़ को गाली देते रहो कमल के गीत गाते रहो खड़े रहो कीचड़ ही में तो ऐसा कैसा है चिंता से हटो, एक क्षण के लिए भी हटो तो कहलाएगी कि हाँ। तो पढ़ना वही भी है जिसमें कि हमारा आत्मकल्याण हो, जिसमें राजदेश कम हो। ऐसा नहीं पढ़ लेना जिससे कि हमारा फिर अहंकार हो जाए कि हम जिससे जानी होंगे, उसके लिए तो शुरू किया ही नहीं अपन। हमें वही पढ़ना जिससे कि हमारे जीवन में काम आए।
भगवान रजनी उसके बारे में
भगवान भगवान है इतने लोगों ने उनको पूजा सुनी। आते जी ने कहा था जब बहुत चर्चा चली तो आते जी ने कहा कि देखो कैसा भी हो जीव तो है, काश अगर ब्रह्मचरी व्रत लेता तो क्षुल्लक बन जाता तो धर्म की कितनी प्रधाना होती और स्वयं का आत्मकल्याण। अगर क्षुल्लक की व्रत ले लेते इतना सब कुछ जानता है, इतनी बारीक चर्चा कर लेता है, निश्चय शुद्ध निश्चय ने की चर्चा करी उसने, शुद्ध निश्चय हाँ। लेकिन इतनी अच्छी चर्चा के बावजूद भी और कहाँ रहे अपनी स्थिति दिखी कर आहारक समस्या है ये लिखना तेजस के दोनों हो गए हैं आहारक। ये बहुत एक्सेप्शनल है, ये इसको जो है प्रोजेक्शन बोल अकेजनल प्रोजेक्शन है, कोई विशेष मौके पर ये बहुत तपस्वी साधु के ही होता है। लेकिन अपन विद्धिधारी महामुनि के मन में, विद्धिधारी महामुनि के मन में सूक्ष्म पदार्थ के ज्ञान के लिए विद्धिधारी महामुनि के मन में सूक्ष्म पदार्थ के ज्ञान के लिए या सूक्ष्म हिंसा से बचने के लिए, बहुत हिंसा हो रही मेरे द्वारा क्या करूं ऐसा संक्लेश जब हो जाए तो सूक्ष्म हिंसा से बचने के लिए जिस सूक्ष्म शरीर की रचना होती है उसे आहारक शरीर या आहारक समुद्धार कहते हैं। इसमें एक हाथ का अत्यंत सुंदर सुडौल, इसमें एक हाथ का अत्यंत एक हाथ ऊंचा लिख लेना नहीं तो आप सोचते हैं एक हाथ का क्या, एक हाथ ऊंचा है ऐसा, एक हाथ का अत्यंत सुंदर सुडौल मैंने अप्रोप्रिएट सात धातु रहित जो अपने अंदर होती है रक्त मांस मध्य इत्यादि नहीं रहेंगे, सात धातु रहे शरीर मुनि के मस्तिष्क से निकलता है, मस्तक से एक हाथ का अत्यंत सुंदर सुडौल सप्त धातु रहे शरीर मुनि के मस्तक से निकलता है जो किसी से बाधित नहीं होता। जो किसी से बाधित नहीं होता और न ही किसी को बाधा उत्पन्न करता है, जो किसी से बाधित नहीं होता न ही किसी को बाधा उत्पन्न करता है और सीधा तीर्थंकर अच्छा जल्दी बोलते हैं जो किसी से जो सीधा लिखे जो सीधा तीर्थंकर या केवली के पाद मूल का स्पर्श करके वापस अपने स्थान पर लौट आता है। ये इसमें प्रोसीजर होता है, एक हाथ ऊंचा वापस लौट आता है। उतने में क्या होता है कि उनके शंका का समाधान हो जाता है, जो भी उनके मन में शंका हुई उसका समाधान हो जाता, या जो उनको हिंसा से संकलेश पहुंच रहा था सूक्ष्म हिंसा से वो उनका दूर हो जाता। उसके लिए स्पर्श भगवान की उसमें की आवश्यकता नहीं, स्पर्श करने मात्र से उनका समाधान होता और सूक्ष्म हिंसा का दोष मिट जाता, वंदना करके आ जाते हैं वो फौरन। आप क्या अभी सूच रहे नहीं औदारिक शरीर नहीं है, आहार शरीर ही नाम है, आहार शरीर नाम है। एक थे, लगभग डेढ़ फिट के हाइट पर। ये जो है मतलब एक विशेष प्रकार की चीज हो गई है। जब ऐसे मुनि महाराज जी होते होंगे तो कैसा अद्भुत लगता होगा कि निकल करके और चला गया। किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। एक चीज तो ये है, बहुत सूक्ष्म होता है तो किसी से बाधित भी नहीं होगा, किसी को बाधा भी नहीं देगा और निकल करके चला जाएगा, समाधान हो जाएगा और वहीं पर बैठे हैं, सब हो गया, भगवान की वंदना करके दर्शन करके लौट आए। मन में बहुत भारी विकल्प हो कि मैं भगवान का दर्शन कैसे करूं और पूरे उसमें जाऊंगा तो हिंसा होगी, तो फिर जो है ऐसा प्रोजेक्शन होता और दर्शन का भी लाभ मिल गया, हिंसा भी नहीं हुई। इस तरह चौथी काल में रिद्धियाँ होती नहीं, रिद्धि भारी होना चाहिए महामंत्र। अभिनय क्षेत्र में हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल केवली तो केवली का पादमूल है वहाँ, फिर केवली समुद्रात और लिख लें क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। मनुष्य से मनुष्य होगा तो पंचम काल में तो लिखा हुआ है कि मिथ्या दृष्टि हो, वो भूमि जाएगा। केवली भगवान के द्वारा वेदनीय नाम और गोत्र, केवली भगवान के द्वारा वेदनीय नाम और गोत्र, इन तीन कर्मों को आयु कर्म के बराबर स्थिति वाला बनाने के लिए, आयु कर्म के बराबर स्थिति वाला बनाने के लिए जो आत्म प्रदेशों का फैलाव होता है, जो आत्म प्रदेशों का फैलाव होता है उसे केवली समुद्धात कहते हैं। ये उसका डेफिनेशन है। इसमें चार अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाएं होती हैं। तो पहले नंबर जो है ऊपर से नीचे फैलेंगे, फिर दाएं से बाएं फैलेंगे, फिर डेप्थ में जाएंगे, मोटाई में फैलेंगे, पहले लंबाई में फिर चौड़ाई में फिर मोटाई। अभी नहीं दिखवा थोड़ी ना, पहले बता रहा कि पहले जो है वर्टिकल है, फिर उसमें लंबाई में, फिर उसके बाद चौड़ाई में, जैसा लोक है तो लोक के ऊपर से नीचे तक, फिर चौड़ाई में, फिर उसके बाद उसकी मोटाई में, और फिर जो स्थान बचे रहेंगे पूरे लोक, ऐसे चार। फिर बाद में सुकड़ेगा भी उसी तरह से। तो जैसे इसका उदाहरण दिया था मैंने कि जैसे कपड़े को निचोड़ा, निचोड़ रख दिया तो ज्यादा देर से सूखेगा, और उसको फैला दिया और झटकार दिया पूरा, फिर डाल दिया तो जल्दी सूख जाएगा। इसी तरह कर्म जो है आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं और फिर संकुचित होते हैं, उतने में जो कर्मों की स्थिति है वो बराबर हो जाती है आयु कर्म के बाद, क्योंकि जितना आयु कर्म होते तो जीवित रहना है और कर्म बाकी बचे रह जाएंगे तो कैसे। तो कहते सारे कर्म एक साथ ही समाप्त हो जाएं, आयु कर्म के साथ ही साथ समाप्त। सर्वप्रथम नंबर वन, चार अवस्थाएं होती हैं। नंबर वन, सबसे पहले आत्म प्रदेश दंडाकार रूप में, सबसे पहले आत्म प्रदेश दंडाकार रूप में वर्टिकल कुछ कम 14 राजू नीचे फैलते, सबसे पहले आत्म प्रदेश दंडे के आकार दंड आकार में कुछ कम 14 राजू को, अब कितना कम ये नहीं लिखा कहीं भी, कुछ थोड़ा सा कम 14 राजू में, टोटल जो है हाइट कितनी है पूरे लोक की तो 14 राजू, उसमें थोड़ा कम है तो कुछ कम 14 राजू ऊंचे फैलते हैं। इसे दंड समुद्घात कहते हैं, केवली समुद्घात में भी इसे दंड समुद्घात। फिर नंबर टू, चौड़ाई में इसे दंड समुद्घात कहते हैं। नंबर टू, चौड़ाई में पूर्व पश्चिम संपूर्ण क्षेत्र में फैलते हैं, चौड़ाई में पूर्व पश्चिम संपूर्ण क्षेत्र में फैलते हैं, ये कपाट अवस्था है। तो कपाट जैसे किवाड़ खोल दिया ऐसे, इसे कपाट, यह कपाट अवस्था है।
महाराणी बीजी ने बोला
धीरे धीरे कपाट अवस्था है। फिर बात नंबर तीन फिर हाँ थोड़ा सा वो दिक्कत होती उसको। नंबर तीन फिर बात वलय को छोड़कर, बात वलय मतलब एटमॉस्फियर, वायु का वलय, उसको अपन इसकी भाषा में बात वलय कहते हैं। फिर बात वलय को छोड़कर समूचे लोक में आत्म प्रदेश फैल जाता है। फिर बात वलय छोड़कर समूचे लोक में आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। यह प्रतर अवस्था है, प्रतर चौड़ी अवस्था, प्रतर पा र सामे रा ता उ रा प्रतर, यह प्रतर अवस्था है। फिर आत्म नंबर चार है, ठीक है नंबर चार, फिर आत्म प्रदेश का सब लोक में फैल जाना, फिर आत्म प्रदेश का सब लोक में फैल जाना लोक पूरण अवस्था है, लोक पूरण अवस्था है। इस तरह इस क्रम से आत्म प्रदेश फैलते हैं, इस तरह इस क्रम से आत्म प्रदेश फैलते हैं, फिर संकुचित होकर, फिर संकुचित होकर मूल शरीर के बराबर हो जाते हैं। क्यों का क्यों हो जाता है, जैसे पहले शुरू किया था, इस क्रम से आत्म प्रदेश फैलते हैं फिर संकुचित होकर मूल शरीर के बराबर हो जाते हैं। पूरा पहले तो अलोक आकाश पूरा, यहाँ आकाशी आकाश, इसमें जो है अपन ने जो एक पुरुष के आकार का कल्पना की है लोक लोक की, वो लोक जो है उस लोक आकाश में तीन बॉर्डर ऊपर दिखाई दी, वो क्या है, वो तीन बात वलय, वो वायु एटमॉस्फियर है, पहले सघन, फिर उसके बाद वायु के साथ वाटर पानी, तो घनोदधि, घनती और उधधि, घन बात वलय, घनोदधि बात वलय, तनु बात वलय, मतलब विरल हवा, पहले सघन हवा है, फिर हवा के साथ मॉइस्चर भी है, फिर विरल हवा, ऐसे तीन बैंड है, तीन मंडल है, उन उन पर पूरा का पूरा वो पूरे लोक को वो घेरे हुए है। तो जब आत्मा के प्रदेश फैलेंगे तो कपाट में कितने फैलेंगे कि जहां तक लोक है वहां तक फैलेंगे, लेकिन अभी बात वलय नहीं है, तक नहीं गए, तो जब लोक पूर्ण समुद्धात होगा तब बात वलय को भी क्रॉस कर रहे हैं और वहां तक चले, माने प्रतर में कितना काम हुआ कि बात वलय रह गए, लोक पूर्ण में क्या होगा, बात वलय भी खुश हो जाएंगे, फिर संकुचित होंगे प्रतर में, फिर कपाट में आ जाएंगे, फिर दंडाकार हो जाएंगे, फिर जो के जो शरीर के बराबर जैसे पहले थे वैसे। संबित दर्शन के आने वाली प्रबंध लिख लिया आत्मोवेशन, ये लिखा था कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बारे में लिखा था कि नहीं, लिखा है ना, शुरू में लिखा होगा एकदम। और कुछ चीज क्वेश्चन कर लीजिए जो पुराना है उसमें से, आठों कर्म के जो भी लिख लिए थे सारा कुछ कर्म स्वास्थ्य जुड़ा लिखा होगा, भी काफी
मालूम
है आपने
बहुत शॉर्ट
में, हाँ मैंने अच्छी किया था मार्क, डिटेल में नहीं पढ़ने का शुरू नहीं है, लेकिन फिर बहुत मेहनत बहुत पड़ेगी आपको, बहुत 14 है, तब 14 में जैसे आपको कल बता रहा हूँ कि अब फिर ऐसा कर किया कि जैसे गुणस्थान और मार्ग ना दोनों साथ साथ चलते हैं,
जैसे आप कल बता रहे हैं ना कि मारविना को गुलिस्तान के साथ इस तरह से टैली करते रहते हैं, तो वो
मतलब सीखने के लिए तो कोई दिक्कत
नहीं,
सीख सकते हैं। 14 मार्गनाएं हैं, गई इंद्रिये सुकाये, इस तरह से एक श्लोक है उसमें, गति इंद्री काय, ऐसा करके 14
काफी डिटेल में पढ़ने से
बहुत डिटेल, तो इतना अगर जितना अपन ने पढ़ा है उतना और पढ़ेंगे
जब
तब समझ पाएंगे, उसका टाइम आपको नहीं हो सकता अपन उसको लगा पाए। कल मैंने बताया था अन्वेषण, जब हम जीव की खोज करते हैं गवेषणा, मार्गना मतलब जिसमें और जिन कारणों के द्वारा जीव की खोज की जाती है उसे मार्गना कहते हैं। जैसे गति मार्गना है, इंद्री मार्गना है, हम जब भी विचार करेंगे तो कहेंगे जीव है, तो कहते किस गति है, अब तो मालूम पड़ेगा, ऐसे तो जीव मिलेगा नहीं, खोजेंगे तो किसी न किसी गति में खोजना पड़ेगा, या तो मनुष्य में जीव मिलेगा, या तिरंज मिलेगा, देव मिलेगा, नारकी मिलेगा, ऐसा भी है जो कि इन चारों गतियों के पार है, तो वो पंचम गति है, तो वो सिद्ध भगवान है, तो ऐसे मिलेगा। फिर कहते कि ठीक है गति में तो मिलेगा, पर ये भी तो देखें कि हमने देख लिया कि मनुष्य गति में मिल गया, मनुष्य गति में आए तो उसकी इंद्री बिंद्री कितनी है, तो फिर इंद्री मार्गना लगाना पड़ेगी कि तेरे अंत में उत्पन्न हुआ है तो एक इंद्री भी हो सकता है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री हो सकता है, तो हमने इंद्री मार्गना लगा दी। शरीर कौन सा मिला भाई, तो कहते देव और नारकी में हुआ होगा तो एक एक शरीर लगा लेना, और अगर मनुष्य तेरे अंत में हुआ होगा तो एक एक शरीर लगा लेना। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा मार्गनाएं पूरी, फिर तब इनको लगाना। मैंने कल एक उदाहरण दिया था ना कि जैसे अब खोज रहे हैं तो कहते सम्यक दृष्टि है, कौन सी गति मिलेगा, क्योंकि चारों गति में पाया जाता सम्यक दृष्टि, तो क्योंकि चारों गति में पाया जाता तो कौन सा सम्यक दृष्टि पाया जाता, अब लगाओ हिसाब, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि पाया जाता कि उपशम सम्यक दृष्टि पाया जाता कि शायद सम्यक दृष्टि पाया, क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि तो वो नहीं करता, शायद सम्यक दृष्टि तो मनुष्य और उसमें पाया जाएगा, नारकी में पाया जाएगा या कि देव में पाया जाएगा, तिरंग गति में शायद सम्यक दर्शन होता नहीं, तो चलिएगा तो कितने कितना लिखना पड़ेगा आपको, तीन गति, जहाँ जहाँ स्थान लिखेंगे वहाँ पर तीन गति लिखते हो उसमें, अब इंद्री कौन सी कितनी होगी, तो कहते संगी पंच इंद्री कोई होगा सम्यक दर्शन, और किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो लिखो इंद्री को सामने, जाति कौन सी होगी, तो कहते एक इंद्री जाति होगी, पंच इंद्री जाति होगी, तो जाति त्रस होगा कि स्थावर होगा, तो कहते त्रस कोई होगा, इस तरह से अब आहारक होगा कि अनाहारक होगा, भक्त होगा कि अभक्त होगा, लगाते रहिएगा ऐसा, तो उसमें मेरा मुझे नहीं लगा कि वो कोई बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है जिसको जिसको ज्ञान है, जिसको छह उपशम मिला है, तो उसको छह उपशम का उपयोग करना है, बच करके जो है इसमें मन लगाने से वैसे एकाग्रता बहुत आती है, अगर मार्गना इत्यादि कोई लगाना सीख जाए तो
एकाग्रता।
किस मार्ग में, कौन सी मार्ग, देव मार्ग में, अब देव मार्ग में लगा रहे हैं तो जब वहाँ पर उत्पन्न होगा तो जो संक्लेश पूर्वक मरता है तो वनवासी जनता इत्यादि में उत्पन्न होता है, तो कहते छह लेशाएं होंगी अपर्याप्त अवस्था में, लेकिन जैसे ही वहाँ उत्पन्न होगा तो कहते पीत लेशा होगी, तीन अशुभ लेशा तो हो नहीं सकती, इसलिए तीन लेशा लगा, तो तीन लेशा लगा दी अपर्याप्त अवस्था में, छह लेशा मान ली मरण की अपेक्षा से, मान ली उधर उत्पत्ति की अपेक्षा से, तीन सब लगाना पड़ेगा उसमें, फिर पीठ लगाएंगे, फिर दूसरे दूसरे सर्ग तक पीठ लगाएंगे, फिर बाद में पद्म लगा लेंगे, वो मतलब नहीं भी समझेंगे तो उसमें हमें कुछ सोच नहीं पा रहा है कि मुझे लग रहा कि जितना बताना था उतना बता चुका, अब तो जो है इसी में कोई डिस्कशन
और
नहीं थे, इसलिए कहो ना मुझे लोग आए थे उन्होंने तो अच्छे से समझा है, लिखा भी है अनेकांत, तो बहुत सरल सा है, पर मैंने कई बार उस चीज को स्पष्ट भी किया है कि मल्टी डायमेंशनल कोई भी चीज होती है, मतलब मल्टी कैसे, क्योंकि बहुत उसके जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वैसी दिखाई पड़े, तो अनेका अंत यस्त विद्यते सा अनेकांत, अंत का अर्थ होता है धर्म, अनेक धर्म एक ही वस्तु में विद्यमान रह सकते हैं, जो इस अवधारणा में विश्वास रखता है वो अनेकांतवाद है, वाद मतलब होता कथन, अनेक वस्तुओं को, अनेक धर्मों को एक ही वस्तु में कथन करने वाली चीज अनेकांतर, और अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य या गौण करके कथन करने की शैली का नाम, या कि सापेक्ष कथन करने की शैली का नाम चार्वाक। और पूरे उसमें से किसी एक को कथन करने के की शैली को चार्वाक भी कहते हैं और उसी को नय भी कहते हैं। वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य या गौण करके कथन करना ये नय का भाग है, इसी को नयवाद भी कहते हैं। इसमें सेवन फोर्थ माने सेवन एस्पेक्ट्स हैं। हम सात तरह से किसी भी चीज को कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, फिर इनएक्सप्रेसिव नहीं कह सकते हैं उसको, जिस समय वो पॉजिटिव है उस समय इनएक्सप्रेसिव भी है, जब वो नेगेटिव है अवक्तव्य, वक्तव्य मतलब कहने योग्य, और अवक्तव्य मतलब कहा ही नहीं जा सकता। आप एक बार में कितना कहेंगे, आप जिस समय कह रहे हैं कि पिता है उस समय आप पुत्र कहाँ कह पा रहे हैं, लेकिन है तो वो, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा रह गया जो कि नहीं कहा गया। हम जो है उसे कथन कर सकते हैं, जो उसमें नहीं है,
जो है उसका कथन कर,
हाँ जो नहीं है, कॉइन का उदाहरण दिया था कि सिक्का अपन ऊपर फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, हेड गिरेगा, टेल गिरेगा, दोनों के बीच की स्थिति में लुढ़क करके जा सकता है। जब हेड गिरेगा तब भी सारी कंडीशंस पॉसिबल है, जब टेल गिरेगा तब भी सारी पॉसिबल कंडीशन है, और ऐसी भी स्थिति है कि हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, अवक्तव्य है। लेकिन जब हेड और टेल दोनों रूप में गिर सकते, सेंटर में गिरा है, तब भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि कहा नहीं जा सकता। साथ ही ढंग से आप किसी भी तरह कर लीजिए, किसी भी उदाहरण में ले लीजिएगा, पिता है अपने पुत्र की अपेक्षा, अपने भाई की अपेक्षा पिता नहीं है, जिस समय वो अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है उस समय वो भाई की अपेक्षा पुत्र नहीं भी है, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि कहे लेंगे, लेकिन जिस समय वो अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है उस समय ये बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं गई, जिस समय वो अपने भाई की अपेक्षा पुत्र नहीं है उस समय भी बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं गई, जिस समय ये दोनों कंडीशन थे उस समय बहुत सारी बातें जो कही नहीं गई। तो कहते चादस्ती क्या नास्ती, चादस्ती नास्ती चाद अवक्तव, चाद अस्थि वक्तव, चाद नास्ती वक्तव, चाद अस्थि नास्ती वक्तव, चाहे जैसी भाषा में आप एक्सपीरियंस मैंने से हमने क्या निकाला कि हर एक चीज को इतने तरह से तो कहा ही जा सकता, एक ही चीज को, तो अगर कोई व्यक्ति एक ही बात को अपनी तरह से कहता है तो हमें नाराज होने की क्या बात है, वो अपनी तरह से कह रहे हैं। जब वस्तु का प्ररूपण हो कोई भी तब हमें उसमें अपनी जिद नहीं करनी चाहिए, यह ऐसा ही है। हाँ जिद उस समय करेंगे जब जब हम ये कहेंगे यह तो पुत्र की अपेक्षा पिता ही है, और कुछ हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता, पुत्र की अपेक्षा तो पिता ही होगा, लेकिन ये पिता ही है भाई नहीं है, तो ऐसा मत करो, वो किसी का भाई भी है वो किसी का। इसी तरह वस्तु जो है जब हम द्रव की अपेक्षा से देखते हैं तो नित्य मालूम पड़ती, शाश्वत मालूम पड़ती, तो अपने संबंधों में देखते कि भैया जी यही तो आए बहुत छोटे हैं, ठीक है हमने जब देखो तो है तो वही, तो आप उसके भीतर जो जीव देख रहे हैं वो तो वही है, लेकिन अगर आप देखें अरे बहुत बड़े हो गए आप बहुत छोटे से थे, तो आपने पर्याय देखी, तो पर्याय की अपेक्षा से तो आपकी मैंने जो बालक पर्याय थी वो समाप्त हो गई, युवा पर्याय समाप्त हो गई, प्रौढ़ हो गई, आप दर्द हो गए, इतनी पर्याय आपकी, सब पर्याय की अपेक्षा देखें इतनी पर्याय नष्ट हो गई, लेकिन आप वही हैं, अगर जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो आप वही, तो कथन करने की चाहिए है, कोई कहेगा ये वो नहीं है तो वो ठीक है कि वो नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा था आपसे ये 50 साल का हो गया ये वो नहीं है, लेकिन जो उसमें आत्मा है वो तो वही है। तो इस तरह से जो है एक ही चीज को हम कई पहलुओं से कथन कर सकते, कम से कम 7 पहलू हैं जिनसे उसको सप्तभंगी कहते हैं। ये जैनिज्म में मुख्य 4 चीजें हैं, नयवाद, सातवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी। और अपन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपने शब्दों में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या कि हम कहेंगे वैचारिक सहिष्णुता का मापदंड, हमारी वैचारिक सहिष्णुता है, हम हर विचार का सम्मान करते हैं कि किसी अपेक्षा आपका विचार ठीक है, तो इस विवाद नष्ट हो जाते हैं। संवाद एक सिंथेटिक है, थैसिस और एंटी थैसिस के बीच एक सिंथेसिस करने की प्रोसेस जो है वो अनेकांत है, हमारा मूल जो सिद्धांत है। मैंने सोच सकते हैं हम कि ऐसा भी तो कह जा सकता है, ऐसा इस समय ऐसी जरूरत है, इस समय ऐसी जरूरत है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आधा खाली, हम दोनों तरह से बात कर सकते हैं। तो जहां हमें लगता है जैसे कि सभा में बैठे हुए थे और वहां पर जाकर के हम ये कह दें कि यहाँ के लोग तो आधे बिल्कुल बुद्धू हैं, तो अभी छोप मत जाए। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ के आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग बड़े बड़े लिखे हैं, वहां दूसरे किस्म के लोग हैं, आधे लोग 50% लोग बहुत, तो लोग ताली बजा लेंगे जब आप क्या बात करें। और उसी में आपने ये कह दिया कि आधे लोग तो बुद्धू हैं, हमें कुछ समझते नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाए। तो कहाँ हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कहना है, कहाँ हमें नेगेटिव एस्पेक्ट, तो उसमें ये भी है कि जब हम अपनी गलतियां देखें तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, जब हम दूसरे की तरफ देखें तो पॉजिटिव। इसमें ये अच्छा ही है, मेरे में भी गलती, तो ये इस तरह से देखे, मैं अपनी बुराइयां देखते रहूंगा, मेरा एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट और दूसरे की दृष्टि से पॉजिटिव, इसमें ये अच्छा है। व्रत नियम से हम ले रहे हैं, इतना तो ले रहे हैं, ये पॉजिटिव है, इतना नहीं ले पा रहे हैं उसको मत देख, जो ले पा रहा हूँ वो तो देख लो। इस तरह दोनों स्थितियां, कुछ लिया भी है कुछ नहीं भी लिया, अनुव्रति है तो अव्रति नहीं है, लेकिन महाव्रति भी नहीं है, तो है तो अनुव्रति, कुछ थोड़ा सा लिया है पार्शियल है, कुछ नहीं भी लिया है तो है भी और नहीं भी है, और भी बहुत कुछ है उसके पास जो भी कहा नहीं जा सकता। लीजिएगा 7 crore तुरंत, उसमें मेन तो फोल्ड है तीन ही, अस्थि नास्ति अस्थि बस, दोनों के बीच है और नहीं के बीच भी कुछ है जो कि कहा नहीं जा सकता।
वादी पदार्थ
कैसे
पूरा जानना
हो तो
प्रत्येक
विषय
को जानना होगा, इसी प्रकार वादी पदार्थों को जानने के लिए उदाहरण करता है।
इसी प्रकार बाकी पदार्थों को, बाकी पदार्थों को वादी लिखा होगा, ये क्या रखा था किसी ने मेरे पास, शुभ तो
मारना
कैके मारना, मारना के पूरे नाम नहीं लिखे आपने, लिखा है देखे ठीक है, गलत गलती हमारी किसी अपेक्षा ठीक है आप जल्दी जल्दी बोल दिए थे मैंने, गति इंद्री ये बोले तो थे मैंने, है ना,
बोले
थे मतलब लेकिन
ठीक
14 गति 14 मारना है, 14 जगह 14 तरह से हम खोज सकते हैं जीवों को, गति लिख तो ले कभी काम आ जाए, गति इंद्री काय योग नंबर 4 5 नंबर वेद, 5वां नंबर वेद 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 कषाय स्त्री पुरुष नंबर कषाय चारों प्रकार की, फिर ज्ञान, अब ज्ञान में कौन सा ज्ञान है, तुम्हारी ज्ञान में सब ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान ही है, इस तरह से सब करेंगे, उसमें अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, सब इसमें आ जाएंगे, फिर संयम, अब संयम में भी देश संयम है कि सकल संयम है, कि उसमें सामायिक चारित्र है, कि चेतोपस्थापना है, कि परिहार विशुद्धि है, कि सुख सांप्राय है, कि यथा ख्यात है, सारा इसमें आ जाए संयम में, फिर दर्शन, तो दर्शन में कौन सा है, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन या कि अदर्शन, फिर लेशा 6 लेशों में से कौन सी लेश है, फिर भव्य, ये भी मार्गना है, भव्य है कि अभव्य, मोटर डिवाइडेशन है कि भव्य जीव और अभव्य जीव, सम्यक, अब इसमें सम्यक के जितने भेद हैं वो सब निकाल लगा लीजिएगा, ये मारना होगा, संगी मारना, संगी मतलब मन वाला है कि मन से है, तो फिर आहारक है, आहारक मारना 14वें नंबर हो गए, 14 आहारक मारना, आहारक रहेगा तो आपके शरीर बनाना शुरू कर दिया है, और अनाहारक है तो शरीर नहीं बना रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन के पीरियड में एक गति से दूसरी गति में जाते समय जीव अनाहारक रहेगा, या फिर जब समुद्रघात करेगा केवली समुद्रघात, तब ऐसे समय आएंगे 3 समय जिनमें कि वो अनाहारक रहेगा, मतलब शरीर के लिए जब कुद्गल वर्जनाएं कोई जीव ग्रहण नहीं करता तब वो अनाहारक दशा कहलाती, जब शरीर के बनाने के लिए कुद्गल वर्जनाएं छुट्टी करता वो आहारक दशा कहलाती है। तो ऐसे तो फिर हर एक के बारे में खूब लिखेंगे, लेकिन सुन सुन करके ये मैंने बहुत कम पढ़ा, बहुत कम है आदर्श से सब सुन सुन करके, इसमें सारी चीजें सुन सुन करके आ रही है, जितनी परिभाषा है, सबसे पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाई थी, 600 प्रश्न उत्तर, उससे ये
वो पढ़ सकते हैं।
कैसा करो, 5 मिनट कम साथ है। Thank you.